हमारे यहाँ तो ऐसी क्षमता थी, पता नहीं ये कहाँ से ये ले आए मनमोहन सिंह को और उसने ऐसी बात ला के इसको कर दी। और ये पढ़े लिखे नहीं, मुझे याद आता है यूनियनिस्ट पार्टी का राज, मैंने छोटू राम से पूछा, वो बहुत बनियों का विरोध करते थे, मैंने कहा तुम भी बनिया मिनिस्टर रखा हुआ है, तो उसने कहा यार हमें जाटों को हिसाब नहीं आता, एक हिसाब किताब करने के लिए रखा हुआ है। ये पता नहीं ये कहाँ मनमोहन सिंह को हिसाब तक करने के लिए ले आए, इसे चौपट कर देगा इनको।
ये आवाज़ है कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की, जिन्होंने 1992 में बीबीसी से बात करते हुए मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाए जाने पर अपनी नाराजगी दिखाई थी। 12 साल बाद उन्होंने इन्हीं मनमोहन सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे मजबूत बनाए रखा। 1989 में कांग्रेस को सत्ता से अलग रखने में उन्होंने बीजेपी का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया। 7 साल बाद उन्होंने उसी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन लिया। शायद यही वजह है कि उन्हें भारतीय राजनीतिज्ञ का चाणक्य कहा जाता था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सुरजीत के शिष्य सीताराम येचुरी कहते हैं
89 के अंदर वो चाणक्य का कैरेक्टर आपको नजर आता है स्पष्ट रूप से। और उन दिनों में टेलीविजन ज्यादा होता नहीं था, एक ही चैनल था जिसके अंदर एक प्रोग्राम होती थी, जहाँ पर कम्युनिस्ट सुरजीत और लाल कृष्ण आडवाणी थे और वो एंकर। अब सवाल ये आया कि मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, सरकार कैसे बनाएंगे। क्यों सुरजीत का ये कहना था टेलीविजन पे, उन्होंने कहा कि देखो मेजॉरिटी नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन लोगों की भावना समझो, वो एंटी कांग्रेस है तो सरकार एंटी कांग्रेस की होनी चाहिए। तब सवाल आया कि अगर कैसे होगा, मतलब मेजॉरिटी उसको मिलेगी जब आप दोनों सपोर्ट करेंगे। और उसी से पहले भी हमने कह दिया था कि बीजेपी के साथ हमारा कोई सपोर्ट नहीं होगा, उसलिए आपको याद होगा उन दिनों में बना था नेशनल फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट। कांग्रेस ने टेलीवीजन पे कहा कि भाई देखो एक रास्ता है, वीपी सिंह को बनना है प्रधानमंत्री, वो लोग चाहते हैं, हम समर्थन करेंगे बाहर से, अगर आडवाणी भी वही काम करेगा बाहर से तब बन सकता है वीपी सिंह। अब ये बात कहने से मामला मतलब एकदम पलट गया देश में, क्योंकि जब तक बीजेपी जो है वो सरकार में आने की तैयारी कर रही थी, मंत्रिमंडल को बांटने की बात हो रही थी, और वीपी सिंह की भी मतलब जान था कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो शायद ये करना पड़ेगा। तो लेकिन ये जब कहा कि मैं हम देंगे बाहर से सपोर्ट, वो भी वही काम करें, तो अब चारा बचा नहीं। और ये सब हुआ टेलीविजन के चैनल पे। अब चाणक्य की बात माने मतलब उस समय पर क्या बोलना और किस तरीके से उसको मनाना, और वही हुआ।
सुरजीत की सरलता और स्पष्टवादिता उन्हें अन्य भारतीय नेताओं से अलग करती थी। उनके खरेपन का स्वाद रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने भी चखा था।
1987 की बात है, तो वो रूसी क्रांति का 70वीं सालगिरह था, तो एक बहुत बड़ा दुनिया के सब कम्युनिस्ट पार्टियों को उन्होंने बुलाया वहाँ पे, एक स्पेशल कांग्रेस की, और कांग्रेस में गोर्बाचोव साहब जो उन्होंने एक नई थीसिस दी, जहाँ पर जो साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच में जो अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध में अभी तक जो माना जाता है कि एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन उन्होंने गोर्बाचोव साहब को इंटरपेनेट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की। अब ये जचा नहीं हमसे, शायद वहाँ पे कई सारे कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी दुनिया के जिनको भी जचा नहीं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं दिखा रहा था। और सुरजीत साहब थे, उन्होंने उसी दिन शाम को एक बैंक्वेट बुलाई थी गोर्बाचोव साहब ने, वहीं पर सीधा जब इंट्रोडक्शन होता है हर डेलीगेशन का, तो सीधा कॉमरेड ईएमएस नंबूदरी पाद हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, वो थे, सुरजीत साहब थे और हम थे, और सीधा गोर्बाचोव के मुंह पे उन्होंने कह दिया कि हम सीपीएम जो है आपकी ये समझ के साथ नहीं है, हमारी समझ अलग है, और सीधा उनके मुंह पे कहा हम समझते हैं कि इस समझ के आधार पर अगर आप चलोगे तो समाजवाद रूस के अंदर बचना मुश्किल है।
बहुत कम लोगों को पता है कि सुरजीत ने अपने जन्मदिन का चुनाव खुद किया था। उनका जन्म 1916 में पंजाब के किसान परिवार में हुआ था।
देखिए पुराने जमाने में किसी को याद नहीं था कि कब पैदा हुए, महीने का और मतलब वो सीजन के हिसाब से वो चलता था, तो साल उनको पता चला। लेकिन स्कूल में जब एसएसएलसी कर रहे थे, उन दिनों की एसएसएलसी जो होती है, तो डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत थी। अब अचानक पूछा गया तो कहते घर में आके माँ से पूछा तो उसको याद नहीं थी डेट, तो अब क्या करें, तो अगले दिन देना था, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो तब उनके दिमाग में मतलब एक डेट जो आ गई भगत सिंह की शहादत का, और उन दिनों में पंजाब में खासतौर पर भगत सिंह का जो भावना जो रहा आज भी है, तो 23 मार्च उन्होंने दे दी डेट, और उसी तरीके से उनका डेट ऑफ बर्थ अब लग गया कि 23 मार्च
23 मार्च 1932 को भगत सिंह के शहादत दिवस पर उन्होंने होशियारपुर कचहरी पर कांग्रेस का झंडा फहराया था। सुरजीत के पोते संदीप सिंह बसी याद करते हैं।
ये 1932 की बात है जब उनकी उम्र 16 साल की थी और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का पहला शहीदी दिवस था। होशियारपुर के अंदर उस टाइम पे ये तय हुआ था कि जो डीसी ऑफिसर्स के ऊपर इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा जड़ाना है, बट क्योंकि वहाँ पर फोर्स इतनी थी, ऑर्डर्स थे कि किसी को अभी उस बिल्डिंग के पास नहीं आया जाए। ये शुरू से भगत सिंह के बहुत बड़े शागिर्द थे। इन्होंने ये वहाँ पर जाकर ऑफिस में देखा तो वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि क्यों नहीं झंडा चढ़ाया जा रहा है। तो इनको किसी ने बोला कि पुलिस देखी है, कैसे आप चढ़ा सकते हो। इन्होंने बोला ठीक है मैं चढ़ाता हूँ। इन्होंने एक लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था, इन्होंने झंडा लिया अपने कुर्ते के अंदर लिया और छुपते छुपाते ये किसी तरीके से बिल्डिंग के ऊपर पहुँच गए और इन्होंने अपना झंडा चढ़ाया इंडिया का। और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनको कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। इन्होंने उसका जवाब दिया मेरा नाम लंडन तोड़ सिंह है।
कम उम्र में ही सुरजीत की प्रीतम कौर से शादी हो गई। सुरजीत अपनी माँ के साथ दुल्हन को घर ला रहे थे कि पुलिस को उनकी भनक लग गई। 92 साल की प्रीतम कौर याद करती हैं।
रास्ते में चले पर दो इकट्ठे होने से टांगे होने से टांगे मैं बैठी थी आप भी बैठे।
शादी के बाद हम लोग तांगे से घर लौट रहे थे। गांव का रास्ता 12-15 किलोमीटर का था। रास्ते में पुलिस उन्हें पकड़ने आ गई। उन्होंने कहा मेरी आज ही शादी हुई है, आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं अपनी घरवाली को अपने घर तक छोड़ाऊँ। मुझे घर छोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब मैं उनसे मिलने जेल गई तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। मेरी ननद ने उन्हें बताया कि मैं उनकी पत्नी हूँ।
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब क्यूबा की आर्थिक हालत खराब हो गई तो उन्होंने पार्टी की तरफ से क्यूबा को 10,000 टन गेहूं भिजवाने का बीड़ा उठाया।
ये तो शायद कॉमरेड सुरजीत ही कर सकते थे। उन्होंने जब देखा कि सोवियत यूनियन बिखर गई और क्यूबा बहुत ही गंभीर और नाजुक हालत में थी क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी निर्भर था सोवियत यूनियन पे, अब वो सब बंद, अब क्यूबा के ऊपर एम्बार्गो के वजह से उनकी जो नेचुरल प्रोडक्शन एडवांटेज था वो कहीं और दुनिया में नहीं बेच सकते थे, तो उनको ज़रूरत था कि मतलब एड का। और उस समय साबुन नहीं था उनके लोगों के नहाने के लिए, खाने के लिए गेहूं नहीं था। तो गवर्नर सुरजीत ने ऐसे ऐलान कर दी कि हम 10,000 टन गेहूं जो है वहाँ पे भेजेंगे, और बहुत बड़ा अभियान देश में चला इन सॉलिडारिटी विद क्यूबा, और उसके साथ लोगों से अनाज कलेक्ट किया या कई पैसे कलेक्ट किए जो सब करके। नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, अब सुरजीत साहब ही है जो ये काम करवा सकते थे। एक स्पेशल ट्रेन दिलवा के पंजाब के मंडियों से ये पूरा ले आए, आप उसको ले गए कलकत्ता के पोर्ट में, और वो शिप का नाम था कैरेबियन प्रिंसेस। और नरसिम्हा राव से उन्होंने कहा कि हम 10,000 टन भेज रहे हैं तो सरकार भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो सरकार 10,000 टन मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किया और उसके साथ 5,000 या 10,000 डिटर्जेंट वो भेज के वो शिप वहाँ पे गई। शिप को रिसीव करने के टाइम पर फिदेल कास्त्रो ने सुरजीत को आमंत्रण किया, और सुरजीत और कुछ वो क्यूबा सॉलिडारिटी कमेटी के शायद अब गुजर गए लेकिन कांग्रेस के सेक्रेटरी हुआ करते थे के एन सिंह, तो वो भी गए और वहाँ पे वो शिप रिसीव हुआ। और तो वहीं पर फिदेल कास्त्रो ने कहा कि अब सुरजीत सोप और सुरजीत ब्रेड से क्यूबा जिंदा रहेगा कुछ दिन।
सुरजीत की पत्नी प्रीतम कौर याद करती हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ने लिखने का शौक था, फिल्में वगैरह वो नहीं देखते थे।
एक ही फिल्म याद है मुझे जो मैंने उनके साथ देखी थी और वो थी मदर इंडिया। एक आध बार वो मुझे विदेश भी लेकर गए हैं। मुझे याद है कि एक बार हम चीन गए थे और एक बार स्वीडन। उनके पास एक छोटा सा रेडियो हुआ करता था जिससे वो दिन में 2-3 बार BBC रेडियो सुना करते थे।
1996 में जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसका समर्थन किया था, लेकिन जब पार्टी में उसका विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी राय पार्टी पर थोपी नहीं।
लेकिन कॉमरेड सुरजीत और ज्योति बसु एक मीटिंग से दोनों वापस आए और आकर ये कहा कि ज्योति बसु को बनने के लिए प्रस्ताव यूनानिमसली बाकी सबसे आया। उनका मानना था कि जनरल सेक्रेटरी थे, उनका मानना था कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उस नौबत में सेंट्रल कमेटी मिली, सेंट्रल कमेटी में तय किया कि नहीं, इन कारणों की वजह से नहीं करना है। तो यूनाइटेड फ्रंट कमेटी में गए, तो उस समय मैं भी गया था उनके साथ, यहाँ में भी ले गए थे। सो हम तीनों पहुँचे कर्नाटका भवन में, तो सब लोग बड़े गुस्से से, अब ज्योति बसु को और सुरजीत को नहीं कह सकते थे, अब मैं बन गया वहाँ पे निशाना, मतलब सब हमें गाली दे रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई अब क्या करें, तो उन्होंने बोला नहीं वापस जाके सेंट्रल कमेटी को रिकन्सिडर करें। तो फिर वापस आए, सेंट्रल कमेटी तब तक खत्म हो गई थी, कुछ लोग जा रहे थे या कुछ चले भी गए थे, लेकिन फिर रिकन्वीन करके फिर वहाँ पे वोटिंग किया, मतलब जो भी हुआ मतलब वो हुआ और यही डिसीजन मंजूर करे। तो नेचुरली सुरजीत और ज्योति बसु दोनों नाराज थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा इन दोनों से कि जितना नाराज थे लेकिन एक कम्युनिस्ट सिपाही थे कि कलेक्टिव डिसीजन जो होगा कमेटी का, उस कलेक्टिव डिसीजन को पालन करना।
पार्टी के इतने बड़े पदों पर काम करने और किंग मेकर की भूमिका निभाने के बावजूद सुरजीत अंत तक एक साधारण किसान की तरह ही रहे। सीताराम येचुरी को उनके साथ कई बार विदेशों में सम्मेलनों में भाग लेने जाना होता था, वहां भी सुरजीत उनके लिए चाय बनाया करते थे।
उनको चाय सुबह पीना ही था, बिना उसके उनकी सिस्टम काम नहीं करती। मॉस्को और बीजिंग में तो खैर उनको रिक्वेस्ट करने से मिल जाता था मतलब सुबह, लेकिन अब जैसे बर्लिन में गया है, वो ऐसे टाइम थे जहाँ पर आपके रूमों के अंदर आजकल जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक हीटर, वो सब नहीं थे। तो बोला कि गीजर की पानी, गर्म पानी, उससे जो है चाय के, जब तभी नए नए आते थे आपके चाय के टी बैग्स, वो टी बैग्स कहता है यार ये तो बड़ा अच्छा इन्वेंशन है किसी ने, की जो भी किया, अब टी बैग लेके जाते थे और गीजर का। तो पहले दिन हमने उनको दिखाया सिखाया कि ये है बेस्ट तरीका, अब जब भी आप उठोगे इससे बना लीजिए, उतना गर्म तो नहीं होगा लेकिन काम चलेगा। तो पहले दिन जब उन्होंने ये ट्राई किया सुबह, वो काम चल गया था। तो उस दिन जब वो बताने के लिए और हाथ में एक कप चाय लेकर वो आए थे मेरे कमरे पे, और तब से मतलब उनकी आदत भी रही और हमारी भी, वो सुबह की चाय पे जो भी चर्चा होती थी उनके साथ, वो उससे बहुत बहुत अनुभव सीखने का मौका मिला।
उन्होंने 13 सालों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का पद संभाला, हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। उनकी छत्रछाया में ही प्रकाश कारत और सीताराम येचुरी जैसे नेता आगे बढ़े और पार्टी का नेतृत्व संभाला। 2005 के बाद से सुरजीत का स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी बुलंद थी कि वो डॉक्टरों को भी हैरानी में डाल अपनी बीमारी से ठीक हो घर लौट आते। अंततः 1 अगस्त 2008 को सुरजीत ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा।
लेकिन एक आखिरी दिनों में उनको पता ही नहीं था कि उनके जेब में एक पैसा नहीं है, ना पैसे से उनका कुछ मतलब था कभी। तो एमपी जब रहे उनको अकाउंट खोलना पड़ा, तो बैंक अकाउंट जॉइंट खोली थी उनके वाइफ के साथ, बीजी के साथ, जो हम उन सबको प्रीतम कौर जी को बीजी कहते हैं। तो अकाउंट खुल गए जॉइंट। अब वो नाजुक स्टेज पे पहुंच गए आखिरी दिनों में, तो वो अकाउंट को बीजी के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए उनकी सिग्नेचर चाहिए थी। अब कभी कभी ऐसा परिस्थिति था कि वो सिग्नेचर कर नहीं पाते थे, तो अंगूठा लगाने की बात थी। अब अंगूठा लगाने के लिए कई लोग कोशिश किए, वो फेल हो गए, तो मेरे को ले गए कि भाई ये करा। अब जैसे मैं उनको समझा के अंगूठा लगाने की बात थी, मान गए वो कर रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने देखा एक कागज़ था जिसपे, शायद वो देख नहीं पाए कागज़ पे कुछ लिखा है, लेकिन वो समझे कि कोरा कागज़ है, एकदम मुट्ठी बंद करके, बस मुट्ठी बंद करके चुप। बोला क्या हुआ मतलब? तो वो चुप हो गया 10 मिनट तक, कुछ बोल देने थे। तो बोला अभी छोड़ो, फिर बाद में देखते हैं 10 मिनट बाद। फिर जब हम गए हैं तो बोला क्या हो गया कॉमरेड? कहता यही करवाता था ब्रिटिश वाले, बड़े जुल्म करते थे, कोरा कागज़ पे हमारा अंगूठा छाप लगा देते थे और उसके ऊपर उनकी मर्जी लिख कर वो प्रचार कर देते थे सब जगह। तो एक उसूल हमने सीखा देवली कॉन्सेंट्रेशन कैम्प, जब वो कॉन्स्पिरेसी केसेस में जब बंद करके ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने सीखा कि कभी भी अपना अंगूठा छाप कोरा कागज पे नहीं लगाना।
चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।